हवेली में रात उतर चुकी थी। दिन की हलचल अब गलियारों की खामोशी में घुल गई थी। ऊपर के हिस्से में विश्वनाथ और शामली का कमरा नर्म पीली रोशनी में डूबा हुआ था, जैसे दीवारें भी धीरे धीरे सांस ले रही हों। शामली ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। टेबल पर वही हार रखा था, सफेद हीरों की कतार, बीच में हल्का गुलाबी पत्थर। रोशनी पड़ते ही वो पत्थर ऐसे चमकता जैसे किसी ने उसमें सांस कैद कर दी हो। उसने उंगलियों से हार को छुआ। ठंडा था, लेकिन उसकी हथेलियां हल्की सी गर्म। इतना खूबसूरत। आवाज लगभग फुसफुसाहट थी, जैसे वो खुद से नहीं किसी एहसास से बात कर रही हो। आईने में उसकी आंखें हार पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग में ऑक्शन हॉल की तस्वीरें तैर रही थीं। लोगों की नजरें, कैमरों की चमक और उनके बीच विश्वनाथ की स्थिर मौजूदगी। पीछे से दरवाजे के बंद होने की बहुत हल्की सी आवाज आई। शामली ने पलटकर नहीं देखा, उसे पता था कौन आया है। विश्वनाथ कमरे में आ चुका था, सूट बदल चुका था। अब वो हल्की रंग की शर्ट और डार्क ट्राउजर में था, टाई नहीं थी, कॉलर का पहला बटन खुला। उसका होना ही कमरे का तापमान बदलने के लिए काफी था। उसकी नजर सीधे आईने में शामली पर गई। वो उसे देख रहा था, उसकी गर्दन की नर्म रेखा, कानों के पास से हटे बाल और आंखों में ठहरी हुई वो चुप्पी जिसमें बहुत कुछ कहा नहीं गया था। हार देख रही हो? उसकी आवाज पीछे से आई, नीची, संतुलित। शामली हल्का सा चौंकी। जी, फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है। विश्वनाथ दो कदम आगे बढ़ा। अब वो इतना पास था कि आईने में दोनों एक ही फ्रेम में थे। खूबसूरती सिर्फ गहनों में नहीं होती, उसने कहा, उन्हें पहनने वाले पर भी निर्भर करती है। शामली की पलकों में एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ी। उसने हार उठाया, जैसे किसी बहाने से अपनी उंगलियों को व्यस्त रखना चाहती हो। इसे मैं अभी पहनूंगी, उसने कहा और हार को पीछे ले जाने लगी। उसी पल विश्वनाथ का हाथ आगे बढ़ा, बहुत धीरे लेकिन पूरे भरोसे के साथ। उसकी उंगलियां हार के दूसरे सिरे पर आकर रुकी। क्यों? उसने पूछा। मेरे हाथों से पहन लोगी तो क्या करंट लगेगा? आवाज में हल्की सी शरारत थी, लेकिन आंखों में गहराई जो मजाक से कहीं ज्यादा कह रही थी। शामली का दिल एक पल को तेज धड़क गया। नहीं, वो मैं, शब्द बीच में ही अटक गए। विश्वनाथ ने हार उसकी हथेली से ले लिया। उसकी उंगलियां जानबूझकर बहुत हल्के से उसकी उंगलियों को छूती हुई निकली, एक सेकंड से भी कम, लेकिन असर गहरा। शांत रहो, उसने कहा, बस खड़ी रहो। शामली ने आईने में उसकी आंखों की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे आंखें झुका ली। विश्वनाथ उसके पीछे आ खड़ा हुआ, इतना करीब कि उसके सांसों की गर्माहट शामली के गर्दन के पास महसूस होने लगी। कमरे में घड़ी की टिक टिक भी जैसे धीमी हो गई थी। उसने हार उठाया, चेन के दोनों सिरे उसके हाथों में थे। जैसे ही वो झुका, उसकी उंगलियां अनजाने में शामली के गर्दन को छू गईं। शामली की सांस अटक गई, कंधे अपने आप तन गए। ढीली मत पड़ो, विश्वनाथ ने बहुत धीमे से कहा, वरना क्लास्प लगाना मुश्किल हो जाएगा। वो जानता था उसके शब्दों से ज्यादा उसकी करीबी असर कर रही है। शामली ने आंखें बंद कर ली, शायद इसलिए कि आईने में उसकी नजरें और ज्यादा असहज हो रही थीं, शायद इसलिए कि उस स्पर्श को सहने के लिए उसे खुद से थोड़ी दूरी चाहिए थी। क्लास्प लगाते हुए उसकी उंगलियां फिर से उसकी त्वचा को छू गईं, इस बार जरा देर तक। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक जानबूझकर रखा गया ठहराव। हार अपनी जगह पर आ चुका था। हो गया, उसने कहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। शामली ने धीरे धीरे आंखें खोली। आईने में उसने खुद को देखा। हार उसकी गर्दन पर बिल्कुल सही बैठा था। हीरों की चमक उसकी त्वचा पर नर्म रोशनी निखेर रही थी और पीछे विश्वनाथ की नजर उस पर टिकी हुई थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार नहीं बल्कि बहुत देर से देख रहा हो। शामली ने अनजाने में अपनी गर्दन को थोड़ा सा सीधा किया, हार हल्का सा हिला। उस हरकत ने विश्वनाथ की आंखों में कुछ बदल दिया, बहुत सूक्ष्म, लेकिन शामली ने उसे महसूस कर लिया। कैसी लग रही हूं? उसने पूछा, आवाज स्थिर रखने की कोशिश में थोड़ी धीमी हो गई। विश्वनाथ ने जवाब तुरंत नहीं दिया। उसकी नजर हार से उठकर उसकी आंखों तक आई। जैसी हो, उसने कहा, उससे बेहतर। शामली के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी उंगलियां जो ड्रेसिंग टेबल के किनारे टिकी थीं, अब थोड़ी कस गईं। वो पलटा नहीं। वो जानती थी अगर वो मुड़ेगी तो उनके बीच की दूरी और कम हो जाएगी। अगर ज्यादा भारी लग रहा हो, विश्वनाथ ने कहा, तो कभी भी उतार सकती हो। नहीं, उसने तुरंत कहा, फिर थोड़ा संभल कर, मुझे अच्छा लग रहा है।
उसने ये कहते हुए आईने में उसकी ओर देखा और उस नजर में सिर्फ हार की बात नहीं थी। विश्वनाथ ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे वो वही सुनना चाहता था। वो एक कदम पीछे हटा, दूरी बनी, लेकिन कमरे में जो तनाव था वो नहीं टूटा। श्यामली अब भी आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसके प्रतिबिंब से टकरा जाती। दोनों कुछ नहीं बोले और उसी खामोशी में रोमांस गाढ़ा होता गया। कोई स्पर्श नहीं, कोई शब्द नहीं, बस दो मौजूदगियां जो एक ही कमरे में एक दूसरे को पूरी तरह महसूस कर रही थीं। विश्वनाथ ने वो कदम पीछे लिया था, लेकिन उसका असर अब भी कमरे में ठहरा हुआ था। श्यामली ने आईने से नजर हटाई और बिना पलटे कहा, आप कुछ कहेंगे नहीं? उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था, जैसे सवाल से ज्यादा वो उस खामोशी को छूना चाहती हो। विश्वनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस फिर से आगे बढ़ा, इस बार धीरे, जैसे हर इंच की दूरी को महसूस करते हुए। वो श्यामली के करीब आकर रुका, इतना कि उसके कंधे के पास उसकी सांसों की लय सुनाई देने लगी। कभी कभी, उसने कहा, कहना जरूरी नहीं होता। श्यामली ने अनजाने में अपनी उंगलियां ढीली की, ड्रेसिंग टेबल के किनारे से हथेली हटी और खाली जगह में ठहर गई। विश्वनाथ ने बहुत हल्के से उस खाली जगह को भरा, छुआ नहीं, बस पास रखा। वो स्पर्श से ज्यादा करीबी थी। आप हमेशा ऐसे ही, श्यामली ने बात अधूरी छोड़ दी। कैसे? उसने पूछा। श्यामली ने पलटकर उसकी ओर देखा, नजरें टकराई और फिर वहीं ठहर गईं। इतनी चुप्पी में भी, उसने धीमे से कहा, सब कुछ कह देने वाले। विश्वनाथ की आंखों में एक ठहरी हुई मुस्कान उभरी, वो और करीब आया, इतना कि अब दूरी सिर्फ सांसों की रह गई और उस पल कमरे की खामोशी और गहरी हो गई।